आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय वायु, जल व मृदा। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 17वां अध्याय है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम इंसानों को जीवन जीने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं वायु, जल और मृदा। ये कैसे हमारे लिए आवश्यक हैं? आपको मालूम है कि वायु में मौजूद होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना इंसानों का तो क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का जीवन जीना मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। सभी जीव जंतुओं को अपना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। और हम इंसानों को भी और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि अगर हमें केवल भोजन मिलता रहे और पानी ना मिले तो भी हमारा जीवन जी पाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो भोजन से भी ज़्यादा आवश्यक होता है। एक बार को हम 2-3 दिन तक बिना भोजन खाए तो जी सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के जीवन जी पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और मिट्टी की अगर हम बात करें तो जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको उगाने के लिए जिस जगह का इस्तेमाल होता है वो मिट्टी ही होती है। मिट्टी में ही हम लोग अलग अलग अनाजों की बुआई करते हैं और फलों की और सब्जियों की भी बुआई करते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि हम जीव जंतुओं को अपना जीवन जीने के लिए, हम इंसानों को अपना जीवन जीने के लिए पानी, वायु और मृदा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हम इस अध्याय में इन तीनों ज़रूरी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी तेज़ वायु चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, उसके साथ में पत्तियां हिलने लगती हैं। सूखी पत्तियां जो ज़मीन पर पड़ी होती हैं वो भी बहने लग जाती हैं, उड़ने लग जाती हैं। कपड़े वगैरह जो आपने सुखाने के लिए छत पर डाले होते हैं वो भी उड़ने लग जाते हैं। और अगर धूल मिट्टी पड़ी हो तो हवा के बहने की वजह से वो धूल मिट्टी के कण भी वायु में उड़ने लग जाते हैं। तो आपको पता है कि वायु जो होती है वो क्या करती है, ये सभी क्रियाएं वायु के वजह से ही होती हैं। जब वायु यानी कि पवन बहती है, चलती है, तो क्या होता है, उसके चलने के वजह से, उसके गति के वजह से उसके आसपास की चीज़ें भी उसके साथ साथ उड़ने लग जाती हैं। अब हम बोलें कि वायु होती क्या है। तो वायु होती है हवा और गैस का मिश्रण। वायु रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, इसका कोई गंध नहीं होता, इसका कोई स्वाद नहीं होता, तो ये गंधहीन और स्वादहीन भी होती है। और हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर वायु की एक परत होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और इस परत के होने के वजह से ही हमारे प्लैनेट पर, हमारे ग्रह पर जीवन का प्रादुर्भाव हो पाया था। मतलब जीवन की शुरुआत हमारे धरती पर इसीलिए हो पाई थी क्योंकि हमारे धरती के चारों ओर वायु की एक परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये जो वायुमंडल होती है ये हमें सूरज के काफी सारी हार्मफुल किरणों से, काफी नुकसानदायक किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिसकी वजह से हम इंसानों का और भी जीव जंतुओं का जीवन धरती के ऊपर ही मुमकिन हो पाया है। अब हम लोगों को पढ़ना है वायु के घटक के बारे में। तो आप लोगों को समझना होगा कि वायु जो होती है किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी होती है, केवल एक ही चीज़ वायु को नहीं बनाती है। वायु में बहुत सारी गैस होती हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जिनसे मिल करके वायु बनती है। तो वायु एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, और इन्हीं अलग अलग चीज़ों को, जिन चीज़ों का ये मिश्रण होती है, इन अलग अलग चीज़ों को ही हम वायु के घटक कहते हैं, या फिर इन्हें वायु के अवयव भी कहा जा सकता है। अवयव या फिर घटक दोनों एक ही बात होती है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि वायु के कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला हम लोग जल वाष्प के बारे में पढ़ेंगे। जल वाष्प को आप लोग साधारण भाषा में भाप कहते हैं। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा, आप लोग अपने छत पर जब कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, जब कड़ी धूप होती है, तो क्या होता है, आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो आपने छत पर तो गीले कपड़े डाले थे, वो सूख गए। इसका मतलब क्या है कि आपके कपड़ों का जो पानी था वो कहीं चला गया, तो वो कहीं और नहीं जाता है। आपके कपड़ों का जो पानी होता है वो भाप में बदल करके वायुमंडल में आपके चारों ओर उड़ता रहता है, और इसी को हम जल वाष्प कहते हैं। साथ ही में आपने देखा होगा कि जब आप लोग रात को सो जाते हैं, फिर सुबह जब आप उठते हैं, तो हल्की हल्की सी ओस की बूंदें आप लोगों को हर जगह दिखाई देती हैं, किसी शीशे पर या फिर घास फूस के ऊपर भी। तो ये जो ओस की बूंदें होती हैं, ये कहाँ से आ जाती हैं रातों रात, ये कहाँ से आ जाती हैं? दिन में तो ये नहीं होती। तो क्या होता है कि जो कपड़े सुखाने के वजह से या फिर कोई भी पानी जो होता है, धूप में जब वो भाप में बदल जाता है, तो जब धूप होती है तब बहुत गर्मी होती है, इसीलिए पानी भाप में बदल जाता है। लेकिन रात के वक्त वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये भाप की बूंदें वापस से पानी में परिवर्तित हो जाती हैं। भाप की बूंदें जब ठंडी हो जाती हैं तो वो वापस से पानी की बूंदों में बदल जाती हैं, और यही पानी की बूंदें आप लोगों को ओस के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये जो ओस है, इसको आप देख पा रहे हो, इसका मतलब ये प्रमाण है, आपको ये बता रहा है कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जलवाष्प क्या होता है। जलवाष्प जो होता है, साधारण भाषा में कहा जाए तो ये भाप होता है पानी का। पानी जब भाप में परिवर्तित होके हमारे वायुमंडल में फैल जाता है, बना रहता है, तो इसी को जलवाष्प कहते हैं। उसके बाद अगला घटक जो है वायु का, वो है ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बारे में आपको पढ़ना है गतिविधि एक के माध्यम से। गतिविधि एक पेज नंबर 139 पर है। इस गतिविधि में आपको क्या करना है, आपको एक खाली बर्तन ले लेना है, थोड़ा गहरा और थोड़ा सा बड़ा आप बर्तन लेंगे तो अच्छा रहेगा, भगोना ले लीजिएगा अपने घर का। और उस खाली भगोने में आपको क्या करना है, आपको एक मोमबत्ती लेकर के उसको जला करके आपको भगोने के बीचों बीच चिपका देना है। आप चाहे तो मोमबत्ती को चिपकाने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, अपने टीचर की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद जिस भगोने में आप लोगों ने एक मोमबत्ती चिपकाई है, उसमें आपको थोड़ा पानी भर देना है, करीब एक चौथाई पानी आप लोगों को भर देना है। उसके बाद जो आपने मोमबत्ती ली है उसे आपको जला लेना है, और मोमबत्ती को जलाने के साथ ही आपको उसको एक ग्लास से ढक देना है। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, चित्र 17.1 पेज नंबर 140। इसमें आपको दिखाया गया है कि जब भगोने में आप मोमबत्ती जला लेंगे और उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए, तो जैसे ही आप मोमबत्ती जला लेंगे तो आपको उस मोमबत्ती को एक गिलास की मदद से ढक देना है, एक खाली गिलास की मदद से ढक देना है। और जैसे ही आप उस खाली गिलास से उस मोमबत्ती को ढकते हैं, तुरंत आप लोगों को गिलास में जो पानी भर जाता है उसकी मात्रा आपको चेक कर लेनी है और अंकित कर देनी है। एक स्केच पेन की सहायता से जितना भी लेवल आ रहा हो गिलास के ऊपर पानी में, उसको आपको चेक कर लेना है और मार्क कर देना है। वहां पर आपको निशान लगा देना है कि कहाँ तक गिलास में पानी आ रहा है। आपने कांच का गिलास लिया होगा, इसलिए आप लोगों को बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगा कि गिलास में कहाँ तक पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जहां तक भी आप लोगों को पानी दिखाई दे रहा होगा, आपको एक स्केच पेन की मदद से वहां पर निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद आप लोगों को कुछ देर तक इंतजार करना है, कुछ देर तक वेट करना है। थोड़ी देर जब आप वेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ समय बाद जो मोमबत्ती आप लोगों ने गिलास के अंदर दबा करके रखी हुई थी, बंद करके रखी हुई थी, वो बुझ जाएगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। तो ये मोमबत्ती इसलिए बुझ गई कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जो आपके आसपास जल रही है, वो जल इसीलिए पा रही है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर किसी जलती हुई चीज को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो उसका जलना तुरंत ही थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने मोमबत्ती रखी थी और उसके बाद उसको गिलास से ढक दिया था। गिलास को ढकने के बाद, मोमबत्ती को गिलास से ढकने के वक्त क्या हुआ था, गिलास में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की गैस उस वक्त मौजूद थी, इसीलिए मोमबत्ती थोड़े देर तक तो जलती रही, लेकिन जैसे ही गिलास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई, मोमबत्ती कुछ देर तक जलती रही, तो उसने अपने जलने की प्रक्रिया में सारी की सारी ऑक्सीजन जो गिलास के अंदर बंद थी उसका उसने इस्तेमाल कर लिया। और जैसे ही गिलास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। और आपने एक और बात लास्ट में नोटिस की होगी, और वो ये होगी कि जैसे ही मोमबत्ती बुझ गई होगी आपकी, तो गिलास के अंदर जो पानी का लेवल होगा वो बढ़ गया होगा। वो पानी का लेवल क्यों बढ़ा, वो पानी का लेवल इसलिए बढ़ा क्योंकि जब आपने मोमबत्ती लगाई थी और जब स्टार्टिंग में अपने गिलास से ढका था उस मोमबत्ती को, तो उस गिलास के अंदर कुछ ऑक्सीजन की गैस थी, लेकिन जब उस ऑक्सीजन की गैस का इस्तेमाल हो गया मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में, तो गिलास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसका मतलब कुछ जगह खाली हो गई गिलास के अंदर, उस जगह को भरने के लिए बाहर से पानी गिलास के अंदर घुसाया, और बाहर से जैसे ही पानी गिलास के अंदर घुसाया, वैसे ही गिलास के अंदर जो पानी का लेवल था पहले, उससे अब थोड़ा बढ़ गया पानी का लेवल। तो इससे आप लोगों को दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ क्यों गई, और दूसरा ये कि गिलास के अंदर पानी का लेवल क्यों बढ़ गया जैसे ही मोमबत्ती बुझ गई। और इन दोनों बातों से, पहली बात तो ये कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ गई, और दूसरी बात तो ये कि गिलास के अंदर पानी का लेवल बढ़ गया, इन दोनों ही बातों से एक बात सिद्ध होती है, एक बात प्रूव होती है, एक बात का आपको प्रमाण मिलता है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता तो चीज़ें जल नहीं पाती। तो आप लोगों को यहाँ पर इस गतिविधि के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि दूसरा घटक जो है हमारे वायुमंडल में वायु का, वो है ऑक्सीजन। उसके बाद तीसरे घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो भी गैस के रूप में हमारे वायु में मौजूद होता है। और आप लोगों ने जो गतिविधि अभी की थी जिसमें आपकी मोमबत्ती बुझ गई थी, तो मोमबत्ती जब जल रही थी तो उस वक्त वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही थी? अपने जलने की प्रक्रिया में उस वक्त वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही थी। और जैसे ही वायु में, यानी कि उस गिलास के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो उस गिलास के अंदर दूसरी गैस बढ़ गई, या फिर दूसरी गैस उस गिलास के अंदर मौजूद थी जो उस मोमबत्ती को बुझाने में मदद कर रही थी। और वो गैस जो उस मोमबत्ती को बुझाने में मदद कर रही थी, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है गैस, ये किसी चीज को जलने नहीं देती, इसे बुझाने में मदद करती है। तो ऊपर जो आपने गतिविधि की, इसमें मोमबत्ती का बुझना ये दर्शाता है कि गिलास के अंदर एक ज्यादा हिस्सा जो है वायु का, वो है नाइट्रोजन गैस से बना हुआ। और नाइट्रोजन जो गैस होती है वो किसी चीज को जलाने में सहायक नहीं होती है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की ही होती है। लगभग 78% हमारे वायु में नाइट्रोजन होता है और 21% होता है ऑक्सीजन। उसके बाद अगले घटक के बारे में, वायु के अगले घटक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जितने पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सांस लेते हैं। और जब भी जीव जंतु और पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर छोड़ते हैं। तो ये तो जीव जंतुओं की बात हो गई जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो आपकी गाड़ियां वगैरह चलती हैं, बस चलती हैं, कार चलती हैं, स्कूटर, बाइक, ये सभी के सभी जो गाड़ियां चलती हैं, जब ये चल रही होती है तो आपको पता है कि ये पेट्रोल का या डीजल का इस्तेमाल करती हैं। और पेट्रोल और डीजल जब जलते हैं तो इनके जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वातावरण में रिलीज होती है। मतलब कि ये गाड़ियां जब चलती हैं, डीजल का इस्तेमाल करती हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं, और पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि वातावरण में छोड़ दी जाती है इन सभी के सभी गाड़ियों के द्वारा। और केवल ये गाड़ियां ही नहीं, और भी कोई चीज़ जो जल रही है, जैसे कि लकड़ियां जो जलती हैं या फिर गाय के उपले जो जलाए जाते हैं, ये सभी के सभी जब चीज़ें जलती हैं तो इनसे भी एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज़ के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वातावरण में डाल दी जाती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है जब भी आप किसी चीज़ को जला रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है जब आप चीज़ों को जला रहे होते हैं। लेकिन आपके घरों में जो LPG गैस होती है और बस वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में जो CNG गैस इस्तेमाल होती है, इनके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कम हो जाती है, बहुत कम निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम LPG का इस्तेमाल करें, सिलेंडर का इस्तेमाल करें अपने घरों में खाना बनाने के लिए, और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह अगर हम CNG का इस्तेमाल करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बहुत कम बढ़ती है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि घर के अंदर LPG के इस्तेमाल से और गाड़ियों में CNG के इस्तेमाल से हम अपने वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को रोक सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, अगर ये बढ़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बढ़ने के वजह से हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है और सांस लेना हर किसी का लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। और वातावरण में प्रदूषण होने की वजह से कई सारी सांस की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है करीब 0.03%, लेकिन अगर ये 0.03% से बढ़ जाए तो हमारे वातावरण में ये प्रदूषण का काम करती है और जिससे बहुत सारे नुकसान हमारे वातावरण को हो सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोगों को बात करनी है धूल और धुएं के बारे में। धूल और धुआं जो होता है ये भी हमारी वायु का एक घटक है। आप लोगों को पता है कि जब भी आप चीज़ों को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो उससे धुआं उत्पन्न होता है। ये धुआं कहीं और नहीं जाता, ये भी हमारे वातावरण में मौजूद वायु के साथ मिक्स हो जाता है, मिश्रित हो जाता है और हमारे वातावरण में ही रहता है। और जब हम चीज़ों को जला रहे होते हैं तो गैस के साथ में कुछ काली काली सूक्ष्म चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमारे वायु में मिक्स हो जाती हैं। और अगर हम बात करें धूल की, तो आप लोगों को पता है जब भी तेज़ हवा चलती है, तेज़ आंधी तूफान चलती है, तो आसपास जो मिट्टी मौजूद होती है वो उड़ करके वातावरण के वायु में मिक्स हो जाती है और ये धूल जो होती है ये भी बाद में जाके वायु का घटक बन जाती है। तो इस बात से आप ये कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में धूल और धुआं जो होता है ये हमेशा, इनके कण जो होते हैं हमारे वायु में, ये उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा हमारे वायु में जल वाष्प मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और कुछ कण धूल और धुएं के मौजूद होते हैं। ये सभी के सभी जो चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके साथ में और भी कई गैसेज मौजूद होती हैं हमारे वातावरण में, हमारी वायु में, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सभी की सभी जो गैसें होती हैं ये भी कुछ निश्चित मात्रा में हमारे वायु में मौजूद होती हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर बताया था पहले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.03% हमारे वातावरण में मौजूद होता है और अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ जाए तो ये प्रदूषण का काम करता है। इसी तरीके से बाकी सारी जो गैसेस होती हैं हमारे वातावरण में मौजूद, वो भी कुछ निश्चित मात्रा में होती हैं और अगर उनमें से कुछ बढ़ जाए तो वो क्या कर सकती हैं? वो हमारे वातावरण को डिस्टर्ब कर सकती हैं, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए प्रकृति क्या करती है? प्रकृति हमेशा ये कोशिश करती है कि हमारे वातावरण में जो गैसेस मौजूद हैं उनका एक बैलेंस बना रहे। जितनी मात्रा में उनको पहले रखा गया है उतनी ही मात्रा में वो बने रहें, तो एक निश्चित मात्रा में सभी की सभी गैसेस जो वायु में मौजूद है वो हमेशा मौजूद रहती हैं और हमारी प्रकृति हमेशा इसी निश्चित मात्रा में इन गैसेस को बनाए रखने की कोशिश करती है। यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं, चित्र 17.2 पेज नंबर 140। इसमें आप लोगों को एक सर्कल दिखाई दे रहा है और उस सर्कल में अलग अलग आपको कलर दिखाए गए हैं और परसेंटेज बताया गया है कि कौन सी गैस कितने परसेंट हमारे वायु में मौजूद होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद होती है, 78% नाइट्रोजन हमारे वायु में मौजूद होती है, 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ अन्य गैसेस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो हमेशा ही हमारे वायु में इतना ही परसेंट हर एक गैसेस का बना रहता है, ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इनको डिस्टर्ब होने से क्या होता है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद अगर आप पेज नंबर 141 पर आ जाएं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि वायुमंडल में उपलब्ध जो वायु के घटक होते हैं उनके परसेंटेज आपको बताए गए हैं और नाम बताए गए हैं। नाइट्रोजन बताया गया है 78%, ऑक्सीजन बताया गया है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है 0.03% और उसके बाद अन्य गैसेज जो हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी गैसेज जो हैं वो सारी की सारी करीब 0.97% हमारे वायु में मौजूद होती हैं। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और और अन्य गैसेस होती हैं और इनका जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, वो निश्चित होता है, इनकी मात्रा निश्चित होती है और इन सभी गैसेस को और भी चीज़ों को मिला करके हम वायु के घटक कहते हैं इन्हें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे गैसेस मौजूद होते हैं हमारे वायु में, तो आप ये कह सकते हैं कि वायु जो होती है वो विभिन्न गैसों की मिक्सचर होती है, विभिन्न गैसों की मिश्रण होती है। और आप लोगों को ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि वायु जो होती है इसका कोई रंग नहीं होता, वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। वायु में खुशबू अगर डाली जाए तो आपको खुशबू की महक आती है, अगर वहाँ कहीं बदबू हो तो आपको बदबू की महक आती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वायु की खुद की कोई गंध नहीं होती है और वायु की कोई स्वाद भी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायु स्थान घेरती है, उसमें भार होता है और वो दाब डालती है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारी बातें समझाऊंगी। इसमें जो वायु स्थान घेरती है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। यहाँ पर गतिविधि दो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी कि वायु स्थान घेरती है से क्या मतलब होता है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वायु में भार होता है और वो दाब डालती है, इसका क्या मतलब होता है। आप लोगों को पता है कि वायु में अलग अलग गैस होते हैं, अलग अलग जो गैस होते हैं इनका कुछ ना कुछ तो वजन होता ही होगा। और क्योंकि ये सारे के सारे गैस कहाँ मौजूद होते हैं, वायु में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वायु का भी कुछ ना कुछ वजन होगा। इसी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें भार होता है, इसका कुछ वजन होता है। भार मतलब कि वजन। तो किसी भी चीज में अगर थोड़ा सा भी वजन होगा तो आप कह सकते हैं कि उसमें भार होता है। उसके बाद अगला है कि वायु दाब डालती है। वायु दाब डालती है से आपको क्या समझना है, आप लोगों को पता है कि अगर आप बहुत तेज कहीं पंखा चल रहा हो उसके सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो क्या होता है, आपके बाल उड़ने लग जाते हैं पीछे की ओर। जिस डायरेक्शन में आपके ऊपर हवा लग रही है उसके उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में आपके बाल उड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हवा जो है आपके बालों को ढकेल रही है। ढकेल रही है मतलब वो प्रेशर लगा रही है, वो फोर्स लगा रही है, वो दाब लगा रही है, धक्का दे रही है आपकी बालों को। तो इसी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वायु जो होती है वो दाब डालती है। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब भी कभी कहीं पर तेज आंधी चलती है तो वहां पेड़ गिर जाते हैं और भी चीजें टूट जाती हैं। इसका मतलब है कि वायु जो होती है उन चीजों पर धक्का लगाती है। धक्का लगाने से ही मतलब है यहाँ पर कि वायु दाब लगाती है, प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगाने से ही वो चीजें टूट जाती हैं या फिर उड़ने लगती हैं। तो इसी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वायु जो होती है वो दाब डालती है अपने आसपास की चीजों पर। अब आपको समझना है कि वायु स्थान घेरती है से क्या मतलब है। इसको आप लोगों को गतिविधि दो के माध्यम से समझना है, जो कि पेज नंबर 141 पर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बर्तन लेना है और उसमें आपको पानी भर देना है। उसके बाद आप लोगों को एक खाली कांच का गिलास लेना है और आपको सीधा ही कोशिश करनी है उस गिलास को डालने की उस पानी के अंदर। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, चित्र 17.3 पेज नंबर 141। इसमें आप देख रहे हैं पहला वाला जो चित्र है इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें गिलास को सीधा ही डाला जा रहा है। सीधा जब आप डालने की कोशिश करेंगे गिलास को पानी के अंदर तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या होता है गिलास के अंदर गैस भरी होती है और वो गैस आपको गिलास को अंदर डालने नहीं देती है। आप जितना भी प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे गिलास बहुत मुश्किल से नीचे जाएगा और आपसे तो वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मजबूती से उसको ढकेलना पड़ेगा, तब जाके आप गिलास को थोड़ा सा अंदर डाल पाएंगे। लेकिन गिलास को अगर आप सीधा ही अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो आपने देखा कि वो सीधा ही गिलास को डालने पर अंदर नहीं जा रहा था, तो अब आपको स्थिति बदलनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको गिलास को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। जैसे ही आप गिलास को थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर पानी भरने लगता है, और गिलास को टेढ़ा करने के बाद आप ये भी देखते हैं कि कुछ बुलबुले निकलने लगती हैं उस गिलास से और गिलास अंदर जाने लग जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बुलबुले आपको नजर आ रही हैं वो क्या बता रही हैं। वो ये बता रही हैं कि गिलास जो आप लोगों को खाली नजर आ रहा था वाकई में वो खाली नहीं था, उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई थी। और ये गैस जो थी जब ये बाहर निकलने लग गई गिलास को टेढ़ा करने पर, तो आप लोगों को बुलबुले नजर आने लग गई। और जैसे ही गिलास में से ये गैस खाली हो गई बुलबुलों के रूप में, तो उसके अंदर पानी आसानी से जाने लगा और गिलास को आप पानी के अंदर डाल पा रहे थे। और आप लोगों को जब भी कभी कोई चीज ऐसी दिखाई देती है जो रखी हुई है सिर्फ वायु में और वो आपको खाली नजर आती है, तो एक्चुअल में, हकीकत में वो चीज खाली नहीं है। उसका जो खाली हिस्सा है वहां पर और कुछ नहीं तो वहां गैस भरी होती है जो हमारे वायु में मौजूद होती है। तो आप इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास की चीजें खाली नजर आती हैं, जैसे आप कहते हैं कि कमरा खाली है, तो कमरा हकीकत में खाली नहीं है, उस कमरे में गैस भरी हुई है। जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, अगर वो खाली हैं, लेकिन वो खाली फिर भी नहीं होती क्योंकि उनमें गैस भरी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो गिलास आपने लिया था इसमें भी गैस भरी हुई थी और गैस भरे होने की वजह से ही इसको टेढ़ा करने पर आप लोगों को बुलबुले नजर आई। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि वायु जो होती है वो स्थान घेरती है, जितना भी खाली स्थान होता है वह वायु मौजूद होती है और आप लोग ये कह सकते हैं कि वायु जो होती है उस स्थान को घेरती है, उसमें वो मौजूद होती है। अब आप लोगों को यहाँ पर समझना है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की गैस होती है वो कैसे प्रतिस्थापित होती है। प्रतिस्थापित मतलब कि वो कैसे हमारे वायुमंडल में आती है और वो कहाँ जाती है उसके बाद। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, आप लोगों को ये पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो कैसे खाना बनाते हैं, वो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होता है उसको वो ले लेते हैं और हमारे वायुमंडल में वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और ये क्रिया पौधे कब करते हैं, ये क्रिया केवल और केवल पौधे तब करते हैं जब हमारे आसपास सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी में ही पौधे खाना बनाते हैं और जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं। इसका मतलब जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं तो हमारे वातावरण में से वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है वो हर एक जीव जंतु, पौधे या फिर जीव जंतु जितने भी होते हैं हमारे आसपास, इन सभी को अपना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन इन्हें कहाँ से मिलता है, ये इन्हें पेड़ पौधों से मिलता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत तो हर किसी को है, पेड़ पौधों को भी है, जीव जंतुओं को भी है, लेकिन ऑक्सीजन को देने वाला केवल हमारे पेड़ पौधे ही हैं। साथ में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को बढ़ाते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को लेने वाले हर कोई है, देने वाले केवल पेड़ पौधे ही हैं। इसीलिए आप लोगों को हमेशा पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पेड़ पौधे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, काटने कम चाहिए, ताकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जितने भी जीव जंतु होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ा रहा है हमारे वातावरण में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करने वाले केवल पेड़ पौधे ही होते हैं, और वो भी केवल वो दिन के टाइम पे ही कर सकते हैं। जब सूरज होते हैं, हमारे रोशनी होती है सूरज की, उसी वक्त पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बाकी रात में तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधे भी जब सांस ले रहे होते हैं उस वक्त वो छोड़ते हैं वायुमंडल में। तो यहाँ पर आपने दो क्रियाओं के बारे में पढ़ा। पहला आपने ये पढ़ा कि जब भी कोई जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब वो सांस लेते हैं उस वक्त वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वातावरण में। और दूसरी क्रिया आपने ये पढ़ी कि जब पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो एक तरीके से पेड़ पौधे एक मदद करते हैं हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैस को बैलेंस बनाने के लिए मदद करते हैं। जीव जंतु जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तो हम लोगों को उनसे ये ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधे। तो एक तरीके से एक बैलेंस बनाने में ये पेड़ पौधे हमारे लिए मदद करते हैं हमारे वातावरण में इन गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंस बनाने के लिए पेड़ पौधे हमारी बहुत मदद करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हम पर निर्भर करते हैं और साथ में खुद पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो सूरज की रोशनी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं उसका इस्तेमाल पेड़ पौधे कर लेते हैं अपना खाना बनाने में, और खाना बनाते वक्त जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं सांस लेने की प्रक्रिया में। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है वायु के अलग अलग उपयोगों के बारे में। तो सबसे पहला है कि वायु वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। आप लोगों को पता है कि वायु में ऑक्सीजन मौजूद होती है और यही ऑक्सीजन जो होती है चीजों को जलने में मदद करती है। उसके बाद अगला है कि वायु जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के श्वसन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन जो होता है वो वायु में मौजूद होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वायु जो होता है वो हमारे लिए जरूरी है सांस लेने के लिए। उसके बाद अगला है वायु नावों को चलाने, पैराशूट, ग्लाइडर तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायक होती है और पक्षी, चमगादड़ आदि वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि वायु जो होती है उसमें मूवमेंट होती है, उसमें गति होती है, इसी की वजह से हल्का हल्का वो मदद कर देती है जितने भी जीव जंतु होते हैं, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनको उड़ने में ये वायु सहायता करती है, और जो हवाई जहाज होता है या फिर जो पैराशूट होता है उसको भी ये चीजें उड़ने में सहायक होती हैं। उसके बाद अगला है वायु फूलों के परागण में सहायक है, यह बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक है। तो बच्चों परागण की जो प्रक्रिया है इसके बारे में आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। परागण एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए फूल जो होते हैं बाद में जाकर के फलों का निर्माण करते हैं, और इसके बारे में आप लोगों को बाद में पढ़ने को मिलेगा, अभी आप केवल ये नाम ही समझ लीजिए। उसके बाद अगला है बीजों के प्रकीर्णन में ये सहायक होती है वायु। इसका मतलब है कि जब बीज बन चुके होते हैं तो बीजों को ये वायु जो होती है उड़ा करके दूसरे जगहों पर ले जाती है, जिसकी वजह से जहां जहां पर ये बीज पहुंच जाते हैं वहां पर ये पौधों का निर्माण कर लेते हैं। बीज जो होते हैं मिट्टी के कॉन्टैक्ट में, मिट्टी के संपर्क में जब आते हैं और उन्हें पानी भी मिल जाता है तब वो बीज जो होता है उनमें अंकुरण निकल आता है और वो पौधों का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला है वायु बादल बनने तथा बादलों की गति के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो बादल होते हैं ये गति कर पाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं क्योंकि वायु में गति होती है। वायु जो होती है वो चलती है तो वो अपने साथ में बादलों को चला करके ले जाती है, बहा करके ले जाती है। उसके बाद आखिरी इस्तेमाल यहाँ पर है कि वायु की सहायता से पवन चक्की चलती है और जो उससे पवन चक्की चलती है उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। पवन चक्की से कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, और आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज कर लेना है, कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।